ये आकाशवाणी है समाचार सेवा प्रभाग से विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के साथ आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा की बातचीत।
17वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब हम सभी को 23 मई को होने वाली मतगणना का इंतजार है। मतगणना से हमें पता चलेगा कि आवाम के मन में क्या है। जैसे कि सर आप जानते हैं पूरा देश अब चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहा है। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए ईवीएम से मतगणना की प्रक्रिया पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
जरूर, ईवीएम से जो मतगणना की जाती है, जहां स्ट्रांग रूम है, जहां ये ईवीएम्स रखी गई हैं, उनके साथ साथ वीवीपैट भी रखी गई हैं, वहीं स्ट्रांग रूम के पास ही जो काउंटिंग का हॉल है वो बनाया जाता है। प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली सेगमेंट के लिए मैक्सिमम 14 टेबल रखते हैं। एक ऐसा कियोस्क भी बनाते हैं जिसमें एक पोलिंग स्टेशन की रैंडमली सिलेक्टेड वीवीपैट स्लिप काउंट हों, लेकिन अब इस बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 5 की काउंट होगी। अगर एक बनाने की जगह है तब तो वो 5 एक के बाद एक करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर जगह है और 5 बन सकते हैं तो वो 1 घंटे में ही 5ों पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप काउंट हो जाएंगी। ये जो काउंटिंग हॉल होता है इसमें पूरे ट्रांसपेरेंसी से ईवीएम कहां से लाई गई, कैसे लाई गई, टेबल तक क्या हुआ, फिर टेबल पर क्या हो रहा है, ये सब चीज जो है सारे कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग, और वो खत्म अगर नहीं हो पाए, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि सर्विस वोटर्स के वोट बहुत आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हो गया है, तो पहले जहां 1-2% पोलिंग होती थी इन लोगों की, वो अब 60-70% होने लगी है। तो उसमें रूल ये बनाया गया है वो काउंटिंग चलती रहेगी और ईवीएम काउंटिंग भी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म नहीं होगी ईवीएम का लास्ट राउंड काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और हर काउंटिंग हॉल में वीडियोग्राफी होगी ताकि ये पता लग सके कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कैसे हुई, कहां हुई, ये सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। और आम जनता को बताने के लिए बाहर अनाउंसमेंट की सुविधा भी होगी। मीडिया के प्रतिनिधियों को ग्रुप्स में एक के बाद एक काउंटिंग हॉल में ले जाकर उन्हें पूरा दिखाने की व्यवस्था भी होगी।
सर जैसा आपने बताया कि इस बार 5 की काउंटिंग होगी और उससे समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, तो ये खबरें भी आ रही हैं कि 5 घंटे ज्यादा लगेंगे, कभी कोई बात कर रहा है कि शायद दूसरे दिन तक परिणाम मिलेंगे, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
इसमें क्या है, जो वीवीपैट स्लिप है उसका पहले एक था कि एक पोलिंग स्टेशन रैंडमली सिलेक्टेड उसकी काउंटिंग होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 का कर दिया है। तो उसमें बहुत सी जगह तो ये है कि हॉल बड़े मिल जाते हैं काउंटिंग के लिए, तो 14 टेबल होंगी ईवीएम काउंट के लिए और अगर 5 टेबल वो लगा सकते हैं वीवीपैट स्लिप काउंट के लिए, तो जैसे ही ईवीएम काउंट खत्म होगा 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट लाके उनका काउंटिंग एक साथ शुरू करके 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन बहुत सी जगह ऐसे हैं जो सुदूर अंचलों में हैं जहां ऐसी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलती हैं, तो वहां एक साथ 5 वीवीपैट स्लिप काउंटिंग के लिए एक्स्ट्रा टेबल लगाना संभव नहीं होता, तो उसमें 5-6 घंटे लगने की संभावना होगी। तो कुछ जगहों पर जहां कंस्ट्रेंट स्पेस का होगा वहां उनको टाइम लगेगा, अदरवाइज तो सबका उसी समय में हो जाएगा।
तो मतलब ये मान सकते हैं कि जितने बड़े राज्य हैं वहां के चुनाव परिणाम उसी दिन
आ जाना चाहिए।
सर आपने काफी चुनाव कराए हैं, बखूबी संचालन किया है, तो चुनाव को लेकर आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है?
चुनाव एक बहुत ही कंटेंशियस प्रक्रिया है। चुनाव से तो आदमी को या तो ताज मिलने वाला होता है या फिर वो 5 साल के लिए सिर्फ बेकार हो जाने वाला है। तो इतने बड़े स्टेक्स के लिए कोशिश ये रहती है सबकी कि किसी न किसी तरह हम जीत जाएं। हर हथकंडा अपनाने की कोशिश अधिकांश राजनीतिक दल, अधिकांश कैंडिडेट करने की कोशिश करते हैं। और होता यह है कि अपने समाज का एक सिस्टम बन गया है कि जीतने के बाद तो सब कहते हैं कि हमने इनको कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन अगर हार गए तो आप खत्म हैं। तो इसलिए चुनौती बहुत बड़ी रहती है और उस चुनौती का सामना इलेक्शन कमीशन करता है। एक तो पूरी ट्रांसपेरेंसी कि जो भी ऑर्डर पास करेंगे वो पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, जो भी शिकायतें आएंगी वो पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, कोई भी गलती अगर किसी ने की है तो उस पर तुरंत तत्परता से निर्णय होगा और वो निर्णय भी पब्लिक डोमेन में हो जाएगा। और मैंने अपने समय में एक बहुत अच्छा वोटर एम्पावरमेंट का एप्लीकेशन बनवाया था जिसे कहते हैं सिटीजन विजिलेंस, सी विजिल। इसमें यह था कि हर वोटर अगर इसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर ले तो कोई भी गलती कहीं भी वो देखे वो तुरंत उसका फोटो खींचे या वीडियो बनाए और सबमिट बटन दबा दे, तो वो सीधा ऐसे अधिकारियों के इनबॉक्स में चला जाएगा जिनकी जिम्मेदारी होगी कि 100 मिनट में उसको वेरीफाई करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, एफआईआर करना हो, अरेस्ट करना हो, सीजर करना हो वो करें और फिर उसको बताएं कि उन्होंने क्या किया। इसमें लोकसभा चुनाव में मैंने पता किया था आज से करीब 13 दिन पहले, तब तक करीब 1,20,000 20,000 कम्प्लेंट आ चुके थे और उनमें से 96% सही पाए जाके उनमें अरेस्ट, FIR या सीजर हो चुका था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है और इससे वोटर का सशक्तिकरण बहुत अच्छा हुआ है।
सर, आपको जानकर खुशी होगी पूरे देश में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है सी विजिल से शिकायतों और उनके निवारण के मामले में।
स्टेट इलेक्शन जब मध्य प्रदेश के हुए थे तो करीब 8,000 के लगभग शिकायतें यहां आई थी, जो कि सेकंड नंबर पे।
सर, ऐसा माना जाता है कि चुनाव आयोग को वास्तविक अधिकार दिलाने का या वाजिब हक दिलाने का श्रेय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री TN शेषन को जाता है कि उन्होंने ही चुनाव आयोग के अधिकारों की व्याख्या की थी। आप क्या मानते हैं, अभी और भविष्य में किस तरह की सुधार की संभावनाएं देखते हैं?
मुझे लगता है कि TN शेषन साहब के 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद काफी चीजें बदली और इलेक्शन कमीशन का रोल जो है आम आदमी की नजर में आया। नहीं तो पहले इलेक्शन कमीशन ने और भी महत्वपूर्ण काम किए थे। जैसे आप देखें, जब पार्टीशन हो रहा था, पहला चुनाव था 50-51-52 के समय, उस समय पार्टीशन की वजह से लोग यहां से वहां गए थे, वहां से यहां आए थे, रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, कोई बेचारे कहीं पुल के नीचे, कहीं एड्रेस भी नहीं थे, मकान नंबर भी नहीं थे उनके। तो ऐसे समय में वोटर लिस्ट बनाने का काम उन्होंने करवाया इलेक्शन कमीशन ने और चुनाव संपन्न कराए। उस समय पहला चुनाव जो था वो हर कैंडिडेट का अलग बैलेट बॉक्स रख के किया गया। इस तरह से करने पर भी, ऐसी चुनौतियां होने पर भी बहुत अच्छी तरह से चुनाव हुआ। तो काम अच्छे होते रहे लेकिन नजर में नहीं था। शेषन साहब ने इलेक्शन कमीशन के हर काम को आम पब्लिक की नजर में लाया और पॉलिटिकल क्लास को ये दिखा दिया कि अगर मैं रेफरी हूं तो हमारा अनुशासन आप सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने उस पर काफी बिल्ड किया, ऊपर उठाया उसको, ताकि इलेक्शन कमीशन की छवि जो है पूरे विश्व में निखरती रही। अभी मैं गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में, मैंने इलेक्शन के ऊपर वहां बोला कि इंडिया के इलेक्शन ऐसे होते हैं, तो आपको ताज्जुब होगा कि वहां के जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स थे उनको ये आश्चर्यजनक लगता था कि भारत जैसा देश, वहां पे मतदाता सूची जो है डिजिटल हो गई है और ERO नेट बन गया है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो आप अपना नाम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने कमरे में बैठ के एडिट करके करवा सकते हैं। और अमेरिका जैसे डेवलप्ड डेमोक्रेसी में अभी तक ये व्यवस्था नहीं है, अभी तक उनकी ऑन पेपर है वोटर लिस्ट।
सर, जैसे भी आप चुनाव पुरानी प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे कि हर कैंडिडेट का एक बैलेट बॉक्स होता था, तो कुछ पुराने ऐसे हिस्ट्री से जुड़े कुछ अगर किससे आपको ध्यान आते हो जो हमारे आज EVM वाले जो हमारे वोटर हैं या फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके लिए शायद वो काफी रोचक हो सकते हैं।
इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती थी। इनफैक्ट एक किताब इलेक्शन कमीशन ने छापी है, उसमें वो सब एनेक्डोट छापे हैं कि जैसे वोटर को इतना एजुकेट भी नहीं किया गया था कि उसको वोट डालने कहां जाना है। तो कहीं खेत में बैलों की जोड़ी दिख रही थी तो वो अपना वोट वहां रखा है, कहीं किसी का वृक्ष था तो वो पेड़ के ऊपर अपना वोट रखा है, बैलेट बॉक्स में जाके डालने के बजाय उन्होंने ऐसा किया। ये सब इलेक्शन कमीशन ने एक किताब के रूप में छपाया है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और उसी से फिर इलेक्शन कमीशन ने ये एक लेसन लिया कि हमें वोटर एजुकेशन के क्षेत्र में भी जाना चाहिए और उन्होंने एक सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एक स्वीप नाम से बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ किया जो बहुत अच्छा चल रहा है और उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रहा है। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि इस लोकसभा चुनाव में हाईएस्ट एवर 67% पोलिंग कंट्री वाइड हुई है।
सर, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। आखिरी चरण के मतदान के पहले तो एक पत्र भी सामने आया, जैसे कि आप जानते हैं। चुनाव आयोग के पूर्व मुखिया के नजरिए से आप इन सब स्थितियों को कैसे देखते हैं?
एक्चुअली चुनाव आयोग में, जैसा कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि तीन कमिश्नर्स होते हैं, तीनों एक जैसे नहीं हो सकते, एक दूसरे के क्लोन नहीं हो सकते, सबकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग होगा। बिल्कुल सही कहा है। और जब भी निर्णय किसी भी विषय पर लेना होता है तो सबको अपनी अपनी सोच है उसको टेबल पर लाना चाहिए ताकि निर्णय जो है वो अच्छा हो सके, प्रभावी हो सके और आम जनता और देश के हित में हो सके। तो जब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त था तो बहुत जबरदस्त गर्मागर्म बहस होती थी हर मुद्दे पर, हम लोग एक एक दो दो घंटे बैठते थे और अंतिम फैसला जब होता था तो वो पूरे सहमति से हो जाता था। अभी कुछ ऐसा परसेप्शन बन रहा है मीडिया के जरिए कि ऐसे आम सहमति नहीं हो पाई और चुनाव आयुक्त जो है वो अपने मत भिन्नता जो है उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए उन्होंने आग्रह किया और वो आग्रह माना नहीं गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा परसेप्शन मीडिया में तब क्रिएट हुआ जब कैंपेन पीरियड 17 मई को पूरा हो चुका था और ये 18 मई को उभरा। तो मुझे इससे ये साफ लगता है कि पूरा चुनाव कैंपेन पीरियड, जिसमें MCCC की शिकायतें आती हैं, जिसमें ऐसे निर्णय करने होते हैं, वो तो पूरी अच्छी तरह से निकल गया। उसके बाद ये आया है तो उससे चुनाव प्रक्रिया को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
तरह से 17वीं लोकसभा के चुनाव को अब तक का सबसे लंबा चुनाव माना जा रहा है कि 2 महीने से ज्यादा समय तक से चुनाव चले हैं, तो मतदाताओं को इतने लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया से जोड़े रखने के संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं?
इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है इलेक्शन कमीशन की वो ये है कि जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं उन्हें राज्य सरकार के अपनी राज्य पुलिस पर जो प्रभाव होता है उसकी वजह से उनको भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि साहब कहीं भी आप स्टेट पुलिस अकेली मत लगाइए, हमें हमेशा केंद्रीय बल लगाइए, तभी हमें निष्पक्ष और फेयर पोलिंग वहां पर हो पाएगी। तो जो केंद्रीय बल लेना होते हैं वो उतना मिल नहीं पाते क्योंकि अपने पास केंद्रीय बलों की जो संख्या है उसमें से कुछ परमानेंट कमिटमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में, बांग्लादेश बॉर्डर पर, असम में जो एनआरसी का काम चल रहा है वहां पर जो ये बल हैं वो वहां बिजी रहते हैं, वहां ड्यूटी पर रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं। जितने मिल पाते हैं उनसे अगर हम सारे पोलिंग स्टेशन, 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, 10 लाख, तो 10 लाख पोलिंग स्टेशन को अगर कवर करना चाहें तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। तो इसीलिए कम फोर्स से जब कराते हैं तो फिर विभिन्न फेजेज में कराना पड़ता है, वही फोर्स जो है एक फेज से दूसरे फेज में मूव कराई जाती है और मूवमेंट में भी करीब 5-6 दिन लगते हैं, तो एक फेज से दूसरे फेज के बीच में 6 दिन का अंतर भी रखना पड़ता है और इस वजह से ये 2 महीने हो जाता है। पिछला लोकसभा चुनाव 9 फेज में हुआ था, इस बार का 7 फेज में हुआ है और अगर अगले चुनाव में ज्यादा केंद्रीय बल मिल गए तो और भी कम हो सकता है।
जैसे अभी आप स्वीप के बारे में बता रहे थे, स्वीप या मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम से मतदान प्रतिशत तो काफी बढ़ा है, पहले से काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन ये उम्मीद के मुताबिक ना होकर काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, इसके आप क्या कारण देखते हैं कि और इसको कैसे स्पीड अप किया जा सकता है?
चुनाव आयोग ने तो बहुत कोशिश की है, जैसे नेशनल कंसल्टेशन किया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, जो दिव्यांग जन है उनके लिए, तो हर तरह की सुविधा उन्हें दी गई है सारे वर्गों को रजिस्टर करने, एनरोल करने और पोलिंग में आने के लिए। एक वोटर असिस्टेंस गाइड भी दी गई, वोटर असिस्टेंस बूथ भी बनाया गया, सारी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन एक तो मौसम, एक तो 42 डिग्री, 43 डिग्री, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि जो रबी की फसल कटने का काम है वो फुल स्केल पे होता है इस समय, और अपने बहुत से राज्यों के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन गरीब लोग हैं वो फसल काटने के लिए नॉर्दर्न स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, ईस्ट, वेस्टर्न यूपी, यहां चले जाते हैं, तो इससे भी प्रभावित होता है। लगभग 5 करोड़ ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जिनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से करीब 1.5 करोड़ के लगभग एनआरआईज हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, यहां उनका नाम दर्ज है लेकिन वो आ नहीं पाते वोट डालने के लिए। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपना मत जो है, अपने विचार पूरे सबमिट कर दिए हैं रिपोर्ट के रूप में, तो अगर एक फैसला उसमें आ जाता है तो उसके अनुसार इनको वोटिंग में शामिल किया जा सकेगा।
सर, आप ही की बात से एक सवाल और निकलता है सामने कि जो ट्रांजिट वर्कर हैं या जो बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेन में उस समय होते हैं, काफी सारे लोग अस्पतालों में होते हैं, तो क्या इन वोटरों को जोड़ने के लिए कोई मोबाइल वोटिंग जैसा कोई सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए आयोग विचार कर रहा है?
मोबाइल वोटिंग तो नहीं विचार कर रहा है, लेकिन चूंकि सर्विस वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट शुरू किया जिसमें 1 वे इलेक्ट्रॉनिक जाता है, बैलेट पेपर जो है जिस दिन लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होती है उसी दिन बैलेट बना के सारे सर्विस वोटर के लिए बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया जाता है और उसी दिन उन्हें मिल जाता है, वो डाउनलोड करके, प्रिंट करके, अपना वोट डाल के लिफाफे में बंद करके भेज दें तो काउंटिंग के बहुत पहले वो मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि इधर से भी पोस्टल तरीके से जाता था, उधर से भी, और उससे 1-2% ही बैलेट आ पाते थे। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है सीडैक पुणे को कि रिटर्न जर्नी भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, उसके लिए आप तकनीक डेवलप करिए जो साइबर सिक्योरिटी से प्रोवन हो, कोई उसको हैक ना कर सके। तो वो टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो गई और कानून में जो आवश्यक सुधार उसके लिए करने हैं वो हो गए तो एक तरह से ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उस तरह की बात भविष्य में हो सकती है लेकिन इसमें बहुत अभी समय लगेगा।
जैसे सर आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन वोटिंग के बारे में विचार चल रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि हम भारत आधार बेस्ड या आधार आधारित वोटिंग पैटर्न के लिए तैयार हो रहा है?
एक्चुअली इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आधार की सीडिंग चालू की थी 2015 में, लेकिन फिर वो प्राइवेसी का मामला आया और उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया कि भाई जो कानून में नहीं है उनको आधार आप नहीं मांग सकते, लेकिन अब वो केस निपट गया है तो अब उसमें आगे अगर कार्रवाई होती है और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाता है तो वो ऑनलाइन वोटिंग को हेल्प करेगा। वैसे आपको बता दूं मैं कि गुजरात में म्युनिसिपल इलेक्शन में ऑनलाइन वोटिंग 2010 से हो रही है।
सर, इसी मीडिया में खबरें आती रही हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य वोटिंग है, हालांकि इसके बाद भी वहां 95% के आसपास मतदान होता है, क्या भारत में वक्त आ गया कि हम अनिवार्य वोटिंग के लिए बातचीत शुरू करें?
मुझे लगता है कि भारत में अनिवार्य वोटिंग करना ठीक नहीं होगा, बहुत से गरीब लोगों के लिए वोटिंग से ज्यादा जरूरी है उस रोज की रोजी कमाना। आदिवासी क्षेत्रों में मैंने देखा है कि जमीन को उनको दे रहे थे फॉरेस्ट राइट सेटल करने का काम चल रहा था कि भाई जो जमीन पे आप खेती करते हो वो उस जमीन का आपको पट्टा देंगे, तो भी वो नहीं आते थे। तो उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो अपने यहाँ ये फिजिबल नहीं लगता जब तक कि उस गरीब आदमी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध ना कराई जाए। और मुझे ये लगता है कि जो स्वीप है और दूसरे एफर्ट्स हैं उनकी वजह से 67% ओवरऑल हम लोग आ चुके हैं। कई राज्यों में आपने देखा होगा 20 राज्य ऐसे हैं अपने 29 में से जहां 70% से ज्यादा वोटिंग होती है, 7 राज्य ऐसे हैं जहां 80% से ज्यादा वोटिंग होती है। तो हम लोग बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि अनिवार्य वोटिंग में फिर सजा देने का भी प्रावधान है। गरीब को पहले हम उससे रोजगार से वंचित कर रहे हैं, फिर उसके बाद बेचारा अगर खुदा ना खास्ता नहीं पहुंच पाया, वोट नहीं डाल पाया, तो फिर उससे और सजा देंगे, तो ये मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा।
जी सर, एक सवाल और निकलता है आप ही के जवाब से कि आपने बताया कि मौसमी परिस्थितियां, गर्मी जैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से भी वोटर कम निकल पाते हैं, तो क्या सभी राजनीतिक दलों के साथ मिल बैठकर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बना सकता जो अनुकूल मौसम में हम चुनाव कराएं?
इसके लिए बहुत बहस हुई है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की भी हुई है कि विधानसभा लोकसभा सबका एक साथ इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने रास्ते सुझाए थे कि कौन कौन से संशोधन संविधान में करने होंगे, कौन कौन से संशोधन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में करने होंगे, वो संशोधन अभी हुए नहीं। अगर वो संशोधन हो जाते हैं, सारे राजनीतिक दल अगर ऑन बोर्ड आ जाएं और वो संशोधन हो जाएं, तो मौसम के अनुसार भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं और साइमल्टेनियस भी कराए जा सकते हैं।
सर, ये तो हुई वोटिंग की बात। अब अगर उम्मीदवारों के बारे में बात करें तो जैसे कि अक्सर हमने देखा है लोकसभा विधानसभा दोनों ही चुनाव में कई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, फिर बाद में एक सीट छोड़ देते हैं और 6 महीने बाद ही दूसरी बार उपचुनाव कराने की स्थिति बन जाती है। ये काफी खर्चीला भी है, टाइम टेकिंग भी है, इसको लेकर आयोग क्या विचार कर रहे हैं?
एक्चुअली पहले तो कई सीटों पर लोग चुनाव लड़ सकते थे, आयोग की पहल से ही एक सुधार हुआ है, उसमें आया कि मैक्सिमम 2 से लड़ सकते हैं, और इसके बाद भी 2 के बारे में भी आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जो 2 से लड़े उस पर ये बंदिश हो, या तो वो जब रिजाइन करे एक सीट से तो उसका रनर अप जो है अपोजिशन पार्टी का उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर दोबारा चुनाव अगर कराने की नौबत आए तो वो पूरा खर्चा दे दोबारा चुनाव कराने का। इस सुझाव पर अभी कोई विचार या कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। उसमें राजनीतिक दलों का ये कहना है कि सब जो सेंसिटिव पदों पर होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, इनको हर तरफ से न केवल अपोजिशन पार्टीज की तरफ से बल्कि अपनी पार्टी की तरफ से भी ये खतरा रहता है कि उनको अनसीट करने के लिए कोई ऐसा षड्यंत्र कर दे कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट का चुनाव ही न होने पाए, ताकि वो बनी नहीं पाए। इस तरह की बातें होती हैं, इसलिए 2 का तो कायम रखना चाहिए, तो इसलिए अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है।
सर, बीच में इसमें एक सुझाव भी आया था सरकारी फंडिंग का कि सरकार फंड करे चुनाव लड़ने के लिए, वो प्रस्ताव कहां तक विचारणीय रहा या उसका क्या हुआ?
अभी तो विचार में नहीं है, क्योंकि उसमें ये देखा गया कि सरकारी फंडिंग से जो पैसे के दुरुपयोग है वो रुक नहीं पाएगा, सरकार का पैसा भी जाएगा और उसके बाद भी ये जो बुराइयां हैं पैसे के दुरुपयोग की चुनाव में वो बनी रहेंगी, क्योंकि आपने खुद देखा होगा इस लोकसभा चुनाव में कई गुना ज्यादा पैसा सीज हुआ है जिसका दुरुपयोग चुनाव में हो रहा था। इनफैक्ट तमिलनाडु चुनाव में तो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी ने 3 ट्रक लोड करेंसी पकड़ी थी, उसको गिनने में ही कई दिन लग गए थे, 570 करोड़ निकला था पैसा, वो 3 ट्रकों में भर के जा रहा था। तो इतना ज्यादा पैसा जहां बह रहा हो वहां पे आप कैसे स्टेट फंडिंग का एक छोटा सा लेके कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी नदी को हम मोड़ देंगे? नहीं मोड़ सकते।
सर, ऐसे ही सवाल जैसे खर्च का है, दूसरा आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर भी है। आयोग ने बहुत सारे प्रयास किए हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के लोग चुनाव मैदान में आ जाते हैं, तो इसको लेकर आयोग में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं?
आयोग का तो मत ये था कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनको आजीवन रोक देना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चल रहा था, उस पर आयोग ने अपना मत ये दिया था, वो अभी पिटीशन पेंडिंग है, चल रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम वोटर तक पूरी जानकारी पहुंचा दें, तो उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब एफिडेविट में आपको हर क्रिमिनल केस जो भी पेंडिंग है, जो भी चल रहा है, जो भी कन्विक्शन है, वो आपको अपने एफिडेविट में बताना पड़ता है, और वो चीज एडीआर जैसी संस्थाएं पब्लिक डोमेन में अखबार के जरिए और दूसरे माध्यम से पहुंचा देती हैं।
भाषा को लेकर भी अब काफी सवाल उठने लगे, खासकर इन चुनावों के दौरान नेताओं की भाषा को लेकर काफी चर्चा रही है, विवाद रहे हैं। इन भाषाओं पर काबू पाने के लिए आप कैसे इसको देखते हैं कि चुनाव को बेहतर बनाया जाए, माहौल और अच्छा हो?
एक्चुअली ये जो बदजुबानी या भाषा का दुरुपयोग या प्रोवोकेटिव कम्युनल या सेंसिटिव बात बोलना या किसी दूसरे की पर्सनल बात के बारे में कुछ कहना, ये सब चीजें एमसीसी के विरुद्ध हैं। इन सब चीजों में कई में अपराध भी हो जाता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और पूर्व में इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय दलों के शीर्षस्थ नेताओं को ऐसा करने से पूरे कैंपेन पीरियड के लिए कैंपेन से अलग कर दिया था। इस बार भी कई नेताओं को 72 घंटे 48 घंटे तक अलग किया। जो असली सुधार इस दिशा में आएगा वो आएगा मीडिया के जरिए, क्योंकि अगर मैं एक नेता हूं और मैं देखता हूं कि एक बदजुबानी का स्टेटमेंट देके मैं 10 दिन के लिए सो जाऊं तो भी मैं 10 दिन तक मीडिया में छाया रहूंगा कि पहले बदजुबानी छपेगी हर जगह, फिर छपेगा कि इतने लोगों ने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे किया था, फिर इनको नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने, फिर इनका ये ऑर्डर हुआ, फिर उनका कोर्ट में गया तो ये हुआ। पूरे 10 दिन तक वो पूरे मीडिया में छाए रहते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो बहुत शॉर्टकट है। जबकि आप अगर शालीनता से प्रचार कर रहे हैं तो जहां प्रचार कर रहे हैं वहां के लोग तो सुन रहे हैं, मीडिया में आपको कोई जगह नहीं मिलने वाली। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें मीडिया के सारे बंधुओं को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों का अगर
बहिष्कार
कर दें कि भाई आप बहुत गलत बोलते हो, आपका नहीं रखेंगे हम।
सर, मीडिया से जुड़ा एक और सवाल है, पेड न्यूज और फेक न्यूज, ये दो ऐसे मसले जो लगातार निकल के सामने आ रहे हैं, इसको नियंत्रण में करने के लिए आयोग किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
आयोग कोशिश करता है कि पेड न्यूज के मामलों में पूरा जांच अच्छी तरह से हो और अगर साबित हो जाता है तो उसमें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उस कैंडिडेट को। इनफैक्ट आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक सिटिंग मिनिस्टर को भी पेड न्यूज के मामले में ही डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो बल्कि एक चीफ मिनिस्टर अशोक चावन जो थे महाराष्ट्र के, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऐसी चीजें तो होती रही हैं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है सोशल मीडिया पर और लोग सोचते हैं कि कल वोटिंग है, आज एक तगड़ी फेक न्यूज फेंक दो तो उससे सारी वोटिंग प्रभावित हो जाए, तो ये चीजें बहुत हो रही हैं और ये अपने ही यहां हो रही हैं, पूरे विश्व में हो रही हैं। और इलेक्शन कमीशन सतर्क है, उन्होंने सोशल मीडिया हब बना लिया है, उन्होंने फैक्ट चेकिंग के लिए व्यवस्था कर दी है, उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैक्ट चेकर लगाने के लिए व्यवस्था कर ली है, तो कोशिश ये है कि हमारे यहां ये प्रभावित न कर पाए।
तो महानगरों में तो आयोग के दिशा निर्देशों का कुछ असर समझ में आ रहा है, लेकिन छोटे जो शहर है, गांव है, कस्बे हैं, जिला मुख्यालय, यहां अभी भी पेड न्यूज या आप कह सकते हैं फेक न्यूज भरपूर मात्रा में, किस तरह के प्रयास करने की जरूरत है ताकि छोटे स्तर पर भी इसको नियंत्रित किया जा सके?
एक्चुअली लोकल लेवल पर क्या होता है कि इलेक्शन मशीनरी उतना ध्यान दे नहीं पाती, इसीलिए सी विजिल लाने की परिकल्पना यही थी कि अगर कोई भी प्रबुद्ध नागरिक ये देखता है कि वहां फेक न्यूज या वहां पेड न्यूज या इस तरह का कुछ काम हो रहा है तो उसके बारे में सी विजिल का उपयोग करके अगर शिकायत कर देते हैं तो अथॉरिटीज को कंपेल कर देगा कि उन्हें उस पर कार्रवाई करनी होगी। जहां तक इलेक्शन मशीनरी का सवाल है, उनके बहुत लिमिटेड वो है, जैसे मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसमें 5-7 मेंबर होते हैं, उनको सारी जानकारी या तो अखबार से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उससे ही मिलती है और उसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने के साधन उनके पास होते नहीं है।
सर, ऐसे मीडिया से जुड़ा एक और मसला है निष्पक्षता को लेकर, एक तरह से पेड न्यूज का इसको रूप कह सकते हैं कि मीडिया, अब कई सारे प्राइवेट चैनल हैं, मोबाइल चैनल आ गए हैं, यूट्यूब चैनल आ गए हैं, जिनसे कहीं ना कहीं निष्पक्षता प्रभावित होती है, किसी एक उम्मीदवार को ज्यादा प्रचार मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, इसको लेके आयोग ने कभी कोई विचार किया है कि मीडिया को निष्पक्ष बनाने के लिए खासकर चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं?
एक्चुअली इसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत विचार करके ये व्यवस्था भी बनाई हुई है कि अगर कोई एक चैनल किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के ही बारे में पॉजिटिव निकाल रहा है तो उसको जो भी नोशनल, मतलब उसके कार्ड रेट के अनुसार जो भी नोशनल खर्चा है वो उस कैंडिडेट के उसमें जुड़ जाएगा। तो इससे डरकर सब लोगों ने अब क्या शुरू कर दिया है कि कैंडिडेट का नाम नहीं लेते, कैंडिडेट का नहीं करेंगे, अब पार्टी का करेंगे। तो उस पर चूंकि कोई सीलिंग नहीं है, तो अगर पार्टी खर्चे पर सीलिंग हो जाए तो ये सब चैनल्स जो है जो आज कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह के खर्चे जुड़ा सर एक और मामला, राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि दल जो है बढ़ा चढ़ाकर वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, बाद में कितने पूरे होते हैं नहीं होते ये तो जनता समझती है, तो क्या आयोग के स्तर पर कोई ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि सियासी पार्टियां घोषणा पत्र में वही वादे करें जो पूरे किए जा सकते हैं या जो प्रैक्टिकल हैं?
ये तो इलेक्शन कमीशन करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि मैनिफेस्टोज का मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन करे और उसमें ये सुनिश्चित करे कि जो भी वादे किए जा रहे हैं उनके लिए आर्थिक संसाधन, वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये भी वो बताएं। और अगर वो नहीं बता सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस देकर उनसे पूछे कि ये कैसे आप पूरा करोगे। लेकिन अल्टीमेट जो जज है वो आम जनता, आम वोटर है, और वो हर 5 साल में उसकी सजा या उसका रिवार्ड सुना सकता है।
बाकी दक्षिण के कई राज्यों में सर देखा है कि वहां तो एक तरह से लालच दिए जाते हैं मतदान के लिए कि टीवी दिया जाएगा, वॉशिंग मशीन देंगे या मिक्सी देंगे या इस तरह के, तो क्या ये सब वादे घोषणा पत्र का हिस्सा बन सकते हैं?
ये वादे बने हैं और देते हैं, तमिलनाडु में तो दिया जाता है, स्कीम है गवर्नमेंट की कि जो भी इस गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं उनको प्रति वर्ष 25,000 रुपए तक का ये सामान जो भी लिस्ट है उसके अनुसार वो अपना चूज कर सकते हैं और वो उन्हें मिलेगा। और इनफैक्ट उस स्कीम्स की वजह से कई बार जब इलेक्शन आ जाते हैं और इलेक्शन मशीनरी जब पकड़ती है कि साहब ये टीवी और ये दिया जा रहा था, तो पता चलता है कि वो उनकी स्कीम के जरिए जाने वाला था और वो लेट हो गया 10 दिन, बीच में इलेक्शन आ गए तो इसलिए वो फंस गया। तो ये सब चीजें तो हो रही हैं।
तो क्या इसको मतदाताओं को रिश्वत देना नहीं मान सकते हम लोग?
अगर मतदाता के लिए उसी समय ईजाद किया जाए कि हम आपको देंगे, और ऐसा भी होता है, फ्रीबीज जो बांटी जाती हैं वो इसी हिसाब से बांटी जाती हैं, तो वो रिश्वत में आता है। लेकिन अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की 5 साल तक कि हम आपको हर साल इतना पैसे का ये देंगे, तो वो तो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया।
सर, बीच में इसी तरह की चर्चाएं आई थी कि राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र बनाते हैं, जो वादे करते हैं, उसकी फंडिंग पार्टी के पैसे से हो, ना कि सरकार के पैसे से, क्योंकि सरकार के पैसे पे तो पूरे देश के लोगों का हक है। इस बारे में आयोग ने कहीं कुछ सोचा है कि जो वादे किए जाते हैं उसमें पार्टी फंडिंग का रेशियो कितना हो या सरकार का जो पैसा है उसका कितना हो?
पार्टी अपने कामकाज के लिए स्टेट फंडिंग की मांग करती है, वो अपने फंड कहां से लाएगी कि मैनिफेस्टो को क्रियान्वयन करे? तो करेंगे तो वो पब्लिक मनी से ही, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो उसको वाइजली ऐसे कामों में लगाएंगे कि जिससे आम गरीब का, जनता का और क्षेत्र का भला हो, विकास हो।
अब सर, बात नोटा की। जब नोटा शुरू किया गया था तो काफी इसको लेकर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव के साथ साथ नोटा को वोट तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी उपयोगिता या व्यावहारिकता उतनी असरदार नहीं है। तो क्या नोटा को व्यावहारिक बनाने के लिए कहीं किसी पहलू पर विचार चल रहे हैं?
आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐसा एक घोषणा की थी कि अगर नोटा को 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो चुनाव रद्द कर देंगे और दूसरा चुनाव फिर कराएंगे प्लेनरी पावर के तहत। उस समय मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था तो हम लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन में विचार किया, तो हम लोगों को जो विधिक राय दी गई वो ये दी गई कि जो आपकी प्लेनरी पावर्स हैं उसमें उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होती हैं जहां कानून में कोई प्रावधान नहीं है उस चुनौती को निपटने का। इस पर्टिकुलर मामले में कानून में प्रावधान है कि इलेक्शन कमीशन शैल डिक्लेयर इलेक्टेड द कैंडिडेट गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट। नोटा कैंडिडेट है नहीं, तो नोटा को भले ही 99.99% वोट मिल जाए और एक वोट किसी कैंडिडेट को मिल गया तो उस एक वोट वाले को इलेक्टेड डिक्लेयर करना पड़ेगा, और कानून में संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है।
सर, आयोग का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि मतदाता निडर और निर्भीक होकर मतदान करें, लेकिन देखा जाता है कि जो कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी करते हैं वो खुद ही ड्यूटी को लेकर काफी डरे हुए रहते हैं या ड्यूटी से बचना चाहते हैं। पहली तो वजह क्या है, चुनाव ड्यूटी में दहशत क्यों अंदर होती है? दूसरा, आयोग इसको किस तरह से एड्रेस करता है?
जो पोलिंग पार्टी के सदस्य हैं वो कई बार अपने को बहुत निरीह मानते हैं, और वाकई निरीह होते हैं, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया 2015 में, पहला इलेक्शन बिहार का हुआ और इतना बढ़िया हुआ कि बिल्कुल भी वहां हिंसा नहीं हुई, जरा सी भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी 17 लोगों की डेथ हो गई पोलिंग डे में, कुर्सी में बैठे बैठे बेचारा आदमी मर गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर।
इस बार भी कई ऐसे किस्से सामने आए हैं कि पीठासीन अधिकारी कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई। अब
तो उसका कारण ये पता लगा कि ये लोग इतने तनाव में रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये कुछ कर देंगे, वैसा हो गया तो वो कुछ कर देंगे। और दूसरी चीज जो इलेक्शन कमीशन ने देखी वो ये देखी कि हमारे आम आदमी जो हैं, आम वर्कर जो हैं, वो बेचारे जो अपने जीवन शैली है वो जीवन शैली में अपने शरीर की प्रभावी देखभाल नहीं कर पाते, तो ऐसे वजह से उनके अंदर ही अंदर कितना डैमेज हो चुका है वो उन्हें पता नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन इस बारे में भी सोच रहा है कि कैसे हम इन लोगों को और स्किल डेवलप करें ताकि इस तरह की समस्या भी ना आए।
अभी सर, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के तहत सर देखने को मिल रहा है कि पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, दिव्यांग कर्मचारी बूथ का संचालन कर रहे हैं, तो इन सब सुधारों का मकसद मतदाताओं को आकर्षित करना है या चुनाव ड्यूटी में लगे जो कर्मचारी हैं उनको भी एक तरह का रिलैक्स देने की कोशिश है?
दोनों ही चीजें सही हैं। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य यह है कि ये जो लोकतंत्र का महात्योहार है चुनाव, इसको हम उसी फेस्टिव स्पिरिट से मनाएं और सब मिलजुल कर मनाएं, सब इसमें भागीदारी करें और पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश करें कि हम कितने फेस्टिव तरीके से अपने चुनाव करते हैं। और इसीलिए दिव्यांगजनों के लिए नेशनल कंसल्टेशन पिछले साल किया गया, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, पोलिंग स्टेशन पर सजावट अच्छी की जाए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, वहां महिलाओं के लिए सुविधाएं, वहां बुजुर्गों के लिए सुविधाएं, सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाएं, पानी की व्यवस्था हो, शेड की व्यवस्था हो। ये सब प्रयास इलेक्शन कमीशन इसीलिए करता है कि हमारे इलेक्शन पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने कि हम कितने फेस्टिव तरीके से इलेक्शन कराते हैं।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के साथ आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट news.air.nic.in।